आत्म प्रकाश भाई जी का हम एक हाथ की ताली से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप यज्ञ के वरिष्ठ भ्राता हैं, मैं समझती हूँ आप सभी परिचित हैं। आत्म भाई जी से कौन नहीं जानते हैं, सभी जानते हैं, कोई एक दो हैं बस। आप ज्ञानामृत प्रेस में ज्ञानामृत पत्रिका और वर्ल्ड रिन्यूअल के आप संपादक हैं और पूरा अपना गॉडली साहित्य जो छपता है उसके आप प्रकाशक हैं। मीडिया विंग के भी आप वाइस चेयरपर्सन हैं और जो भी अपने यज्ञ की सेवाएं होती हैं वर्तमान समय में जो मैनेजमेंट कमिटी है उसके भी आप मेंबर हैं। यज्ञ के निर्णय जो लिए जाते हैं उसमें भी आपका विशेष रोल रहता है। आप साकार मम्मा बाबा के समय से 1957 में आप ज्ञान में आए, जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे, आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। ओम प्रकाश भाई जो इंदौर जोन के इंचार्ज रहे और आप से पार्टी थे और पढ़ाई में भी आप काफी होशियार थे, स्कॉलरशिप्स लेते थे। आप ज्ञान में आने के तुरंत बाद आपने अपने परिवार को भी पूरा ज्ञान में लाया और आपका पूरा परिवार लगभग समर्पित परिवार रहा। और उसके बाद बाबा ने आपको दिल्ली में जगदीश भाई के साथ ईश्वरीय साहित्य की सेवा में रखा, जहां आपने बहुत अथक रूप से वो सेवाएं दी, कई चित्र प्रदर्शनियां बनाई, मेलों में, म्यूजियम में आपका काफी रोल रहा। और उसके बाद यहां 92 में शांतिवन में बाप दादा की प्रेरणा से ज्ञानामृत प्रेस आपने संभाली और वर्तमान में ज्ञानामृत प्रेस जो है वो नदी के पास काला मगरा बहुत नजदीक है, जो नदी के पास अपना भवन बन रहा है उसके नजदीक करीब 1 किलोमीटर पर अब नया ज्ञानामृत प्रेस बना है। अगर आपको कभी चांस मिलता है तो आप जरूर वो स्थान भी देखना, तो भाई साहब अभी वो संभालते हैं। आप बहुत ही सरल स्वभावी हैं, यज्ञ के आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार। हम इतने वर्षों से यज्ञ में रहते हैं जो हम आपको देखते हैं और इन गुणों ने आपको बहुत आगे बढ़ाया है। आपके लिए मैं कहूंगी, दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई, फूल तो बहुत खिलते हैं गुलशन में, खुशबू देता है कोई कोई। तो आप बाबा की बगिया के वो रूहानी खुशबूदार गुलाब हैं जिनसे अनेक आत्माएं प्रेरणा पाती हैं। तो आपसे हम सुनेंगे मम्मा बाबा के साथ के अनुभव और बाप समान कैसे बने।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा मम्मा के साथ के अनुभव और विशेष क्या पुरुषार्थ करें कि हम भी उन जैसे बन जाए। आज देखो मुरली में था, बाबा मम्मा समान ऊंच पद पाना है आज था ना, तो बाबा मम्मा समान पुरुषार्थ करो, ये था। तो क्या पुरुषार्थ किया जाए कि हम भी बाप समान बन जाए। देखिए जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए, कहते मैं साधारण तन में आया, कहते हैं ना मैं एक साधारण तन का आधार लेता हूं, परंतु मैं ये नहीं कह सकता कि ब्रह्मा बाबा कोई साधारण थे। साधारण तन नहीं था वो भी, आप कहेंगे कैसे, यानी साधारण व्यक्तित्व नहीं था। जब हम उनसे पहली बार मिले, मैंने आज तक लाइफ में, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, बहुत लोगों से मिले, ऐसी पर्सनालिटी कभी कहीं देखी नहीं है। ऐसी दिव्य पर्सनालिटी कई साधु संन्यासियों से हरिद्वार में मिले, इधर मिले, उधर मिले, कहीं मिले, यंग एज में मिले, उसके बाद तो इस यहां ही आगे कहीं गए नहीं। तो ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसी विशेष पर्सनैलिटी किसी भी कहीं भी मैंने देखी नहीं। आप कहेंगे कैसे, हम जब फर्स्ट टाइम मिले बाबा से, हम पहले से मालूम है, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे पटियाला में, वहां हमको ज्ञान मिला हमारे भ्राता ओम प्रकाश चुनिद्या। तो पहले तो नहीं माने ज्ञान के, फिर ब्रह्मान गए, हाँ हम आत्मा हैं। और यही मानते ही सारा कुछ मान गए, मैं आत्मा हूं ये इतना माना, तो दो तीन दिन में सारा ज्ञान सुन लिया, बहुत अच्छा लगा। मैं अभी रशिया गया था कुछ दिन पहले, एक ने पूछा, पत्रकार थे कोई थे, कि व्हाट वाज योर हैप्पीएस्ट डे। मैं आपसे पूछता हूं कि आपका सबसे ज्यादा खुशी का दिन कौन सा था, बताओ बताओ जोर से बताओ, क्या कौन सा था, जब बाबा मिले, है जी। देखिए बाबा तो बाद में मिले, आप तो डायरेक्ट बाबा से तो नहीं मिले, हम भी डायरेक्ट बाबा से नहीं मिले, पहले तो कुछ और मिला। देखिए मैं बताऊं आपको, एक वो चित्र दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, विष्णु जी लेटे हुए हैं वो सागर पर, और वो जो सांप वो शेषनाग पर, और लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही है। तो बाबा ने तो ये चित्र हटवा दिया, लक्ष्मी को हटा दिया, अलहदा कर दिया कि क्यों पांव क्यों दबा रही है, मां की थकावट थोड़ा आती है। तो वो मुस्कुराने लगे विष्णु जी, खुश होने लगे वो। तो वो लक्ष्मी ने सोचा शायद मेरी कोई सेवा में गलती है, तो ये मुस्कुरा रहे हैं किसी बात पर। पूछा आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, उसने क्या कहा, विष्णु जी ने बोला ये दृष्टांत है, कहानी है, कुछ भी समझिए, कि मैं गीता ज्ञान को सिमरण करके बड़ा खुश हो रहा हूं। हर बात के ठीक नहीं, हम कहते हैं बाबा तो मिले बाद में, पहले परिचय दिया। आप जैसे आप कभी किसी ने आपको हैंडबिल दिया होगा, किसी ने आपको आज प्रदर्शनी देखने आओ, कभी कोई म्यूजियम देखने आओ, आपको थोड़ा मालूम था कि यहां भगवान मिलेगा, था मालूम आपको। उससे जब ज्ञान सुनने से पहले किसी को मालूम था कि ये भगवान ज्ञान दे रहा है, किसी को मालूम था, नहीं। हाँ भाई ज्ञान अच्छा है, ये बात है। जब पहले पहले हम जब ज्ञान सुनते हैं ना, आई टेल यू, मैंने जब पहले ज्ञान सुना, बहुत वंडरफुल ज्ञान है, सोचो आप कितना वंडरफुल है, साइंटिफिक है, रमणीक है, रैशनल है, ये कोई भक्ति मार्ग का अंश नहीं है। आप देखते हैं बुद्धि में बैठने वाला, बुद्धि गम्य है, रीजनेबल है, ऐसा नहीं कि आप मान जाओ, कोई कहता है आपको भी आप मेरी बात में, बहने कहती है मान जाओ, नहीं, वो रीजनेबल है। इतना अच्छा, इतना वंडरफुल ज्ञान है, मैं तो इस ज्ञान को सुन करके ही बड़ा खुश हुआ। आप भी खुश हुए होंगे ज्ञान को सुन के, बोलो आप जब आपने ज्ञान सुना खुशी हुई कि नहीं हुई, हुई। तो पहला बताओ फिर वो कौन सा, मैंने उसको कहा मैं हैप्पी, हैप्पियर और हैप्पीएस्ट बताऊंगा, हैप्पी भी हुआ, हैप्पियर भी हुआ, हैप्पीएस्ट भी हुआ। उसने कहा बताओ कैसे, कि जब मुझे ये ज्ञान मिला ना, आई वॉज वेरी हैप्पी, एक खुशी का दिन था, सेटिस्फेक्शन थी मन को, मन बड़ा यानी बुद्धि जो है वो कंटेंटेड थी, बहुत खुश हुई, बहुत हमें खुशी आई कि क्या वंडरफुल ज्ञान है। आप सोचो आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान, भले पहले आत्मा आत्मा हम कहते थे क्या है कुछ पता नहीं था, परमात्मा कौन है पूरा एग्जैक्ट जो नॉलेज है, ज्योति बिंदु है, ज्योति, पहले तो ज्योतिर्लिंगम कहते थे और ज्योति स्वरूप कहते थे, बिल्कुल बुद्धि में बैठ गया, इसके अलावा हो ही नहीं सकता कोई। अच्छा फिर आप वो सृष्टि चक्र का ज्ञान पढ़ते थे वो गीता में, हे अर्जुन हम पहले भी थे अब भी हैं फिर भी मिलेंगे, है ना गीता में ये कोई चीज, आप लोग तो गीता बहुत पढ़ोगे, हम तो बचपन में आए ज्ञान में, ज्यादा थोड़ा बहुत सुना पढ़ा, हे अर्जुन हम पहले भी थे अब भी हैं फिर भी मिलते रहेंगे, अनेक बार मैंने आपको ज्ञान दिया, ये क्या है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री इज नॉट लीनियर, इट इज साइक्लिक, ये उसमें ये बड़ा आनंद आया, ये बात सुन के बड़ी खुशी हुई। अब आप देखिए, सारी दुनिया ये जानती है, कहती है राम था, रावण था, सीता चुराई गई, हनुमान बोलाया, क्या बोला, जड़ी बूटी लाया, ये किया वो किया, मारा मारी हो, ये किया वो, कितना बड़ी रामायण है, बहुत बड़ा ग्रंथ था, कितनी टीका है उस पर बताओ। हमारे बाबा ने क्या कहा, इतना कौन कह सकता है, वो इतनी बड़ी बातें दुनिया के लिए साधु सन्यासी हिसाब से पूछो, सब मानते हैं इस बात को, ये हूब हो गए, ये राइट मानते हैं, उड़ के गया, सागर पार किया, पत्नी क्या क्या है। तो बाबा ने क्या कहा, एक सेंटेंस बोला, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्या बाबा ने कहा बच्चे, क्या बाबा ने बोला बच्चे, रावण तो ऐसा कभी था ही नहीं, यही बोला ना बाबा ने कि दस सिर वाला रावण कोई होता ही नहीं है, इससे क्या सारी रामायण, क्या हुआ रामायण का, जब रावण ही ऐसा नहीं था, और बाबा कहता है कि सीता मराया, राम की स्त्री चुरा ले कोई, ये हो ही नहीं सकता। हू सेइंग दिस थिंग, सोचो सारी दुनिया एक तरफ, बाबा कहता ऐसा कभी था ही नहीं, ऑल माइटी अथॉरिटी के महावाक्य, कोई इंसान ये नहीं हिम्मत नहीं कर सकता बोलने की, है बात के नहीं है, क्या कहते आप, ये बात बताना। हाँ, उसका आध्यात्मिक रहस्य बताया कि आप सीता हैं, मैं राम हूं, रावण पांच विकार, नर के पांच, कितनी बड़ी एक्सप्लेनेशन है ये, कितनी वंडर वाली बात है। इसी तरह महाभारत की बात है, कितनी बड़ी महाभारत बना दी, उसमें है क्या, बाबा ने क्या एक बात कही, बच्चे मैंने तो ज्ञान द्वापर के अंत में दिया नहीं, भगवान वाच, कब ज्ञान देता है बाबा, भगवान कब देता है बोलो, कलयुग के अंत में देता है। तो सारी महाभारत भी क्या हो गया महाभारत, और यादव कौरव पांडव कौन है ये भी बता दिया, सारी एक्सप्लेन कर दिया। तो ये बातें सुन के इतनी खुशी हुई, इतनी हमारी जो हमने सुना हुआ था, पढ़ा हुआ था, छोटे बचपन में शास्त्रों में कथाएं सुनी हुई थी, उन सब की एक्सप्लेनेशन मिलेगी, बड़ी वंडरफुल है कुछ, तो बहुत हम तो खुश हो गए। अब देखो मुरली में कैसे कैसी बातें आती है बताओ, अभी उस दिन मुरली में था, बच्चे रावण में आत्मा नहीं है, सुनी थी वाणी, वो याद है भूल गए, परंतु सब आत्माओं में रावण है, ये था एक मुरली में, कितनी जबरदस्त बात है, दुनिया रावण क्या मानते, बाबा ने कहा बच्चे रावण में तो आत्मा है ही नहीं, तुम दिखाते हो दस, तो दस आत्मा होनी चाहिए, वो तो है ही नहीं उसमें, परंतु सब आत्माओं में रावण है। ऐसी ऐसी बातें सुन के आप सुनते हैं, हु स्पीकिंग, निश्चय हुआ सिवाय भगवान के ये कोई नहीं बोल सकता, उसी वक्त जब ज्ञान सुना। आप सभी को निश्चय है, मुरली किसकी है, ये भगवान वाच्य है। आप बताओ, जिसको ये निश्चय हो जाए भगवान आया हुआ है और वो नई दुनिया की स्थापना कर रहा है, होगा, आप बताइए दुनिया कब तक चलेगी, आप विश्वास करो। भले बाबा आप तो कहते हैं बाबा तो कहता है विनाश होगा, अभी तक हुआ तो नहीं, अरे भाई इट टेक्स जनरेशंस, अब क्या बदलना है, युग नहीं बदलना, सारा कल्प बदलना है, कल्पांतर होना है, नहीं नया कल्प शुरू होना, टाइम तो कुछ लगता है ना। तो कहने का मतलब यह, ये जो निश्चय हमको भी निश्चय हुआ, आपको सब निश्चय है कि स्वयं परमात्मा आकर के नई दुनिया की स्थापना कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए बोलो, फिर आप विचार करो, गॉड हैज कम एंड ही इज एस्टैब्लिशिंग द न्यू वर्ल्ड, व्हाट आई शुड डू, हमें क्या करना चाहिए, जवाब दो, हमारा क्या कार्य होना चाहिए बोलो। हाँ जी, तो हमने ये सोचा, हमने जो विचार किया, अभी बाबा से मिले भी नहीं, कि जो बाप का कार्य सो हम बच्चों का कार्य, बस ये इतना सोच लिया कि जो बाबा का, जो भगवान कार्य कर रहा है, हम वही कार्य करेंगे, ये निश्चय, उसमें हमारी पहले ही ज्ञान सुनते ही हो गया, तो आई वॉज वेरी हैप्पी, कहना पहले हैप्पीस्ट कौन सा। फिर हमें गए, भाई हमने कहा ये ज्ञान कहां से, अभी तक मिले तो नहीं थे बाबा से, ये आपको जो भाई था हमारा ओम प्रकाश भाई अभी शरीर छोड़ दिया उन्होंने एक दो साल पहले, कि ये आपको ज्ञान मिला कहां से, पहले बताया नहीं। उन्होंने कहा ऐसे शिव बाबा बताया था कि ये है इनके धन द्वारा मिल रहा है, तो हम भी मिलने जाते हैं, सात आठ दिन हुए थे हमें, तब हम दिल्ली में मिलने गए थे बाबा मामा से, तब बाबा मामा से पहली बार मिलना हुआ, तब हमारी जो लीला दादी आपके जो सिकंदराबाद है सेवा केंद्र, वहां पर वहां की इंचार्ज होंगी पहले, और भी आसपास सेवा केंद्र होंगे, वो उन पहली पहले हमारी उस दादी ने हमको बाबा मम्मा से मिलाया, समझे, क्योंकि अभी तो दादियों से तो मिल लेते हैं ठीक है, लेकिन वो अब भी उनकी ब्राह्मणी होती है, ये होता है बड़ा मुश्किल होता है, तो बाबा मम्मा से जो मिलाया, बाबा मम्मा से हमें पहले पहले मुलाकात कराने वाली हमारी लीला दादी थी। मुझे उनकी सारी इमेज याद है, कैसे उन्होंने मिलाया, कितना प्यार से मिलाया, कितना वो ठीक प्रकार से परिचय दिया, क्योंकि बाबा मामा को तो पता नहीं मालूम होगा या नहीं होगा। जब हम बाबा मामा को देखा, मैंने कहा था ना ऐसी पर्सनैलिटी मैंने नहीं देखी, बाबा मामा उस वक्त 80 इयर्स के थे, उस वक्त 1957 80 इयर्स 80, हम थे केवल 20-21 साल के थे, तो बाबा को देखा, देखो बैठे कैसे थे बताओ, आप सब बैठे हैं कैसे, देखो सीधे बैठे थे और टांग पे टांग, ऐसा शरीर लचीला था, इट मीन सारी लाइफ में नियम और संयम को पालन किया हुआ था, शाइनिंग फेस आई टेल यू, और आईज बिविचिंग, इतनी चमकदार वो, और सीधे बैठे देख करके बहुत प्रभावित हुए, बाबा मम्मा दोनों को देखा जैसे कि ये क्या है, हंसों का जोड़ा कहो फरिश्ते कहो, ऐसे लगते थे, और वो देखते ही हमने कहा बस यही हमारे लौकिक परलौकिक कुछ भी अलौकिक सब यही है, बस ये निश्चय होगा, अब इनके इनके सिवाय हमारा और कोई नहीं, ये बताएं आपको। तो बाबा से मिले, मम्मा से मिले, वो शायद जानते होंगे यहां, पता नहीं उन दिनों में क्या था, जैसे अभी है ना, अभी तो कोई निकल रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई ज्यादा मालूम नहीं पड़ता है, कितने जिज्ञासु निकले, क्या निकले, बोल उन दिनों में अगर कोई एक भी भाई अच्छा निकल आता था, सारे ईसवी परिवार को मालूम पड़ जाता, थोड़े लोग थे, बहुत थोड़े, हजार भी मुश्किल होंगे शायद 1957 में, सेंटर भी कितने थे, हैदराबाद तो था ही नहीं, सिकंदराबाद है तो कोई उसमें नाम निशान भी नहीं था, अहमदाबाद भी नहीं थे तब जब हम आए थे ज्ञान में, और सारे भारत में 5-7 सेवा केंद्र होंगे, ज्यादा नहीं 7-10 होंगे बस मुश्किल से, बॉम्बे में एक दो थे, दिल्ली में एक दो थे, कलकत्ता नहीं था, पटना था, कोई नहीं रही, कानपुर में था एक, तो एक भी कोई भाई निकलता था तो बाबा मम्मा को मालूम पड़ता था, निकले अच्छा कोई जिज्ञासु, और तो हम बाबा से मिले, मम्मा से मिले, कैसे मिलते थे बाबा मम्मा से, अभी तो हाथ ही मुश्किल से मिलाते हैं, वहां तो गोद में जाएंगे बाबा, प्यार करेंगे, बाकी पहनेंगे, टोली खिलाएंगे मुख में, और क्योंकि 5000 वर्ष के बाद मिलने तो आंसू भी हमारे आए, तो बाबा ने कहा बच्चे आप तो मिल लिए, तो पता बताया कि आप तो इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, मैं हाँ बाबा इंजीनियरिंग तो बहुत मुश्किल पढ़ाई होती है, मुश्किल मैंने बहुत लंबी पढ़ाई होती है, विनाश तो सामने करा है, बाबा उस वक्त भी कह रहे हैं, देखो कितना सेम कह रहे हैं, विनाश सामने करा है, ये पढ़ाई तुम्हारे क्या काम आएगी, पढ़ाई काम आने वाली नहीं है, स्पष्ट मुझे कह दिया, इतना फेथ मेरे पास था तभी तो कहा, नहीं तो कोई नया हो जिज्ञासु देखो क्या बाबा कह रहा है, कहा बच्चे ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, भृगु ऋषि थे उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है, तो हमने कहा ठीक है फिर पढ़ने की क्या दरकार है, पहले बार आगे आ गया था ज्ञान से, दैट वॉज माई हैप्पियर डे, वो जो दिन था बाबा ने ये कहा, बाबा मम्मा से मिले, उनकी पर्सनैलिटी को देखा, उनके बच्चे जिसे गोद ली, दैट वॉज माई हैप्पियर डे इन माई लाइफ। फिर उसके बाद हम आए, मैंने कहा ठीक है बाबा अगर आप कहते तो हम नहीं पढ़ाई करते, हमें दरकार ही नहीं है, क्या करेंगे पढ़ के। बाबा ने कहा किसी कार्य सेवा में लग जाओ। तो उस वक्त जिज्ञासु भी कम होते थे और सेंटर भी कम थे और बाबा को हैंड्स चाहिए भी थे, क्योंकि वो उनके बाबा के तो होगा ना प्लानिंग में क्या है, किसको क्या काम देना है, ये बात तो थी ना। और बाबा वाजे ने हरी, जिसे स्थापना जल्दी करनी है, या ही वाजे ने हरी, हरी बने यानी स्थापना के लिए हरी था। तो एक आध दिन रह के हम वापस आए तो बाबा को लेटर लिखा कि पहले आप उसमें आया होगा फिर मैं रिवाइज कर देता हूं, शायद आपको याद हो कि ना हो। हमने इंग्लिश में लेटर लिखा, बाबा ने इंग्लिश में जवाब दिया। मैंने कहा आई डोंट वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग एंड डिजाइन बिल्डिंग, बट आई वॉन्ट टू बी ए कार्नर स्टोन ऑफ द वन ऑफ द ह्यूज एडिफिस बिल्डिंग ऑफ न्यू गोल्डन एज विच यू आर कंस्ट्रक्टिंग। फिर कहा आई डोंट वॉन्ट टू डिजाइन हाईवेज एंड रोड्स, बट आई वॉन्ट टू रन ऑन द हाईवे गोइंग टू परमधाम एंड कमिंग टू गोल्डन एज। इस प्रकार से लेटर लिखा। अब बाबा ने भी जवाब बड़े विद इन टू डेज जवाब दिया, इंग्लिश में जवाब दिया। चाइल्ड, डियर चाइल्ड, बी पेशेंट, गिव दिस नॉलेज टू योर को इंजीनियर्स, इंजीनियर्स को ज्ञान दो एंड टू योर लोकल फैमिली। तो बाबा के ये दो फरमान हमने फॉलो किए। फटाफट हमने अपना जो रूम था हॉस्टल का बनाया, कमरा दरी बिछाई और बल्ब लाल लगा दिया, तब ये तो होता नहीं था शेम, ग्रामोफोन लाए, रिगार बजाओ, जो उन दिनों में रिकार्ड थे ऐसे ऐसे, बात मत पूछिए कि उन दिनों में बंदेलियां बहुत होती थी तो रिकार्ड भी ऐसे ऐसे होते थे, रिकार्ड बजाया। तो कई स्टूडेंट्स हमारे जिज्ञासु भी बन के वहां वाले, तो हमारा वार्डन कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, सुबह चार बजे तुम जागते हो और ये रिगार्ड बजाते हो, तो ये तो यहां का रिवाज नहीं है। मैंने हम जा रहे हैं छोड़ के, बस हॉस्टल छोड़ा जाके सेवा, फिर तो सेवा केंद्र बने, वो सेवा केंद्र बनाया, दादी जानकी जी आई हमारे, हम मैं था ओम प्रकाश एक भाई और एक और निकल आए, तो दादी जानकी आई, हम तो खुद खाना बनाते थे हीटर पर ही बनाते थे, तो दादी ने खुद आके ब्रह्म भोजन किया, कुछ जिज्ञासु निकल गए दो चार पांच। तो तभी दादी है, जब भी मिलो दादी कहती मैंने आप लोगों को भोजन खिलाया था, मैं और ओम प्रकाश मिलेंगे ना तभी क्लास में सामने देखेंगे ना, देखो आतम को और ओम प्रकाश को मैंने भोजन अपने हाथ से बना के खिलाया। मैं दादी जी आप बुलाना मत, तो मैं भी अब खिला सकता हूँ बना करके। ऐसे हंसी से में कहते हैं, कहो तो मैं भी एक दिन बना के खिला दूं। तो इस प्रकार से दादियों की पालना लेते हुए करते हुए और आगे बढ़ते रहे, कई कई प्रकार के सेवा केंद्र खुले, कई सेवाएं हुई, चंडीगढ़ खुला, नाभा खुला, ये उन दिनों में पहले स्टूडेंट्स निकालना मुश्किल होता था, फिर सेवा केंद्र खोलना तो बड़ी एक बहुत बड़ी बात थी। मकान नहीं मिलते थे, बताएं आपको, आप तो कहते आओ हमारे मकान में ले लो कोई बात नहीं है, बड़ा अच्छा इंप्रेशन है, तब तो कहते वो सिंध का जादूगर, ऐसे बोलते थे बाबा को, तो मकान ले मकान के खाली करो। तो तब हम किसी न किसी प्रकार से जैसे कैसे सेवा केंद्र खुलते थे और मनी प्रॉब्लम भी होता था, लेकिन हम बताए बाबा मम्मा से डायरेक्ट पूछते थे, हम मम्मा से विशेष मम्मा से पूछेंगे क्या करें, कैसे चलेगा खर्चा, कैसे होगा सारा, जैसे हम सब मिल करके मम्मा से। तो फिर हम सेवा चंडीगढ़ खुला, ये खुला, कई प्रकार की सेवा होती गई। एक तो सेवा शुरू की, दूसरा बाबा ने कहा कि अपने लौकिक परिवार को दो ज्ञान, तो हम लौकिक परिवार के पास भी गए, जो बाबा ने कहा हमने करने की कोशिश की। वहां गए तो हमारे सबको ज्ञान सुनाया, क्योंकि भक्ति वाला घराना था, सारे भगत थे, वो भागवत पुराण, ये पुराण जो है ना, ये दूसरे सिंपल सिंपल मुश्किल वेद वगैरह यानी सिंपल गीता ये वो पढ़ते थे, हम भी वो पिताजी तो सुनते थे, सारा परिवार सुनता था, ज्ञान सुनाया तो सब कहें ज्ञान तो बहुत अच्छा है, हमारी माता जी ज्ञान में आ गए, दूसरा एक सिस्टर ज्ञान में आ गए, वो ज्ञान में आ गए, और हमारे लौकिक पिताजी भी ज्ञान सुना आया, जब उन्होंने एक शर्त रख ली, वन कंडीशन, क्या कंडीशन थी, अगर आपका बाबा मुझे कुछ दिखा दे यानी साक्षात्कार करा दे तब मैं ज्ञान में चलूंगा, ये कह दिया। मैंने कहा मुझे तो अभी तक हुआ नहीं, मैं बाबा मामा से मिलके आया हूं, दादियों को देखा, सब कुछ देखा, ज्ञान भी सुनाता हूं, मुझे तो नहीं, आप वो कैसे होगा। उन्होंने कहा ये है कंडीशन। अच्छा ठीक है, फिर हम समर वेकेशन थी तो गुरुवार को भोग लगाया, तो उठ के खड़े हो गए, वो बीच में ही उठ के खड़े हो गए, और वो खड़े होकर कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कभी इधर पकड़ते हैं, कभी इधर पकड़ते हैं, कभी इधर पकड़ते हैं, उनको पकड़ा जाता नहीं वो। तो फिर वो नीचे उतरे बड़े उदास, कहते मैं तो कहीं गया था पता नहीं, वहां बहुत छोटा सा बड़ा सुंदर सिद्ध किशन मेरे सामने आया, मैं उसको पकड़ना चाहता हूं तो यहां जाऊं तो वहां चला जाए, वहां जाऊं तो वहां चला जाए, मैं पकड़ नहीं सका। मैं आप तो बड़े ऐसे, वो तो छोटा बच्चा था, कहता पता नहीं क्या बात, मैं नहीं पकड़ सका। और फिर आपके बाबा जी आया, वो जो उन्होंने देखा नहीं था अभी तक, बाबा जी आए श्वेत पोष, उनका उसका नाम प्यारेलाल था। प्यारेलाल जब तुम इस ज्ञान में निश्चय बुद्धि होवोगे और धारणाओं पर चलोगे, सब ठीक करोगे, तभी श्री कृष्ण तुम्हारी गोद में आएगा। उनने कहा ठीक है, बस उनने भी कंडीशन रख ली, बाबा ने भी, तुमने सब कुछ धारण कर लिया, कोई सिंपल था, गांव वाले थे, भगत भी थे, धारणा होगी ठीक। अगले सप्ताह फिर हम भोग लगाया तो बस फिर वो फिर ध्यान में चले गए, ध्यान में गए, श्री कृष्ण उनकी गोद में आया और उनके इतने आंसू आए जैसे सारी मनोकामना उसकी पूर्ण हो गई, बहुत खुश हुए। मैं बताऊं आपका बाबा जो हमारा है ये भक्त वत्सलम भी है, भक्तों की भी भावना पूर्ण करता है, उन्होंने बड़ी भक्ति की थी। रात रात भर वो महाभारत को क्या होती है भागवत पढ़ते रहते थे, सुनाते रहते थे, बहुत भक्ति की थी। तो वो भी ज्ञान में चल पड़े, सारा परिवार ज्ञान में चल पड़ा। और गांव वाले भी गए, वो क्या हो गया भक्त जी को, क्योंकि वो जगह जगह सुनाते थे। वो हमारी खेती थी 40 एकड़ लैंड थी, बाकी काम तो वो ये काम भी करते, सुनाना कथा सुनाना। तो वो भी ज्ञान में चल, सारा परिवार ज्ञान में चल पड़ा, बड़े भाई भी छोटे भाई भी सारे ज्ञान में आ गए। इसी करते करते हमारा इंजीनियरिंग भी पूरा हो गया। आई टेल यू विदाउट एनी स्टडी, विदाउट एनी इंटरेस्ट, विद डिस इंटरेस्ट, मालूम नहीं कैसे पास हो गए। पता नहीं हमें, पता अभी आप मत पूछो इंजीनियरिंग की बात ही पता नहीं मुझे कुछ। हमें लिख देते थे, जो भी लिख देते थे बगैर किसी इंटरेस्ट के, बगैर किसी पढ़ाई लिखाई के, क्योंकि उनके में कभी बाबा आ रहे हैं, आते थे बाबा सेंटरों पे आते थे, मम्मा आती थी सेंटरों पर, कभी प्रदर्शनी लगा रहे हैं, कभी भोग आया दो दो बार दिन हफ्ते में, हम इसी में बिजी रहते थे। कभी अब हापुड़ जाना है, कभी दिल्ली जाना है, ऐसे ऐसे हमें दिल मारा बुद्धि तो हटी हुई थी उसमें, फिर भी मालूम नहीं कैसे पास हो गए। अब लेकिन हम मगर डिग्री लेने की क्या दरकार है, डिग्री लेने जाएंगे तो फिर वो जेब में डिग्री होगी तो चलो कोई परीक्षा आएगी उसमें सेंटर पर रहने के, चलो नौकरी कर लो। हमने कोई जॉब नहीं किया, बस डिग्री ली ली हम, जब पढ़ाई बारी पूरी हुई 4-5 साल की, लौकिक माता पिता को लेकर के बाबा के पास आए। और बाबा ने तो कह दिया, मैंने कहा था कि तुम्हारी पढ़ाई काम नहीं आएगी, तो ना पढ़ाई थी ना पढ़ाई काम आई, और कहा ठीक है तुम सेवा पे लगा दिया, कहा समर्पित कर दिया, ये अपने मुख से मुझको भेज दिया दिल्ली जगदीश भाई जी के पास। वहां पर हम जाके सेवा में बिजी हो गए। तो वो दिन जब बाबा ने हमें स्वीकार कर लिया, दैट वॉज माई हैप्पीएस्ट डे। स्वयं भगवान ने कहा तुम ये सेवा करो। बताइए अभी तक मुश्किल से समर्पण होते हैं, बहने तो जल्दी होते हैं, भाई तो बड़े मुश्किल से होते हैं, तब भगवान ने स्वयं कहा बच्चे तुम इस सेवा में लग जाओ, वहां उनको दरकार है। लेकिन ये जगदीश भाई क्यों, तुम पढ़े लिखे आदमी को मेरे पास कैसे भेज दिया सची। तो उनने कहा कोई आगे बाबा की प्लानिंग होगी, तो प्लानिंग थी ना ये, देखो अगर हम उनसे ट्रेनिंग ना लेते, अनुभवी ना बनते, वो चले गए तो कैसे होता। तो मैं कहता हूं बाबा भृगु ऋषि भी आपकी, बाबा की लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, क्या होना क्या नहीं होना है। इस प्रकार से हम सेवा में लग गए, तो हम ये कहते हैं मेरे लिए बहुत एक हैप्पीएस्ट डे था। फिर तो बाबा से मिलना जुलना बहुत हुआ। एक बार की बात है, हम आए यहां मधुबन में बीच बीच में जब पढ़ते तो आते रहते थे, फर्स्ट टाइम था या सेकंड टाइम था, सेकंड होगा शायद। तो उन तभी भी ये इसकी मधुबन की जो पांडव मनी से कहते, इसको पोकरण हाउस कहते थे, अभी खरीद गया था मैं समझता हूं, पहले हमारा नहीं था, किराए पर था, ये पोकरण हाउस था, फिर पांडव मन नाम बाद में रखा। तो यहां पर कुछ नहीं था, सिवाय जो बीच का है ना ये टीन वाला छप्पर और ये सारा, अभी और भी डिफाइंड होगा काफी, यही इलाका था बस, यही बाबा भी रहते थे, मम्मा भी रहती थी, बाबा कमरा था, अभी वही बाबा कमरा है, थोड़ा बड़ा कर दिया, मम्मा कमरा भी दीदी वाला था और यीशु का दादी का ऑफिस था, सारा चारों तरफ और कोई मकान नहीं, तो थोड़ा सा कोई कच्चे मकान ऊपर बने हुए थे जहां कोई दर्जी सिलाई करता था। तो मैं बता रहा था कि फिर ये बिल्कुल साफ था, ये शांति स्तंभ तो अभी बाद में बना, कोई ये ना वो था, हॉल भी नहीं था, हिस्ट्री हॉल भी नहीं था और कोई ये ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं थे, न इंद्रप्रस्थ था, सारा खाली मकान था, घास का लान था। तो मैंने देखा शाम को बाबा बच्चों के साथ खेल रहे हैं, थोड़े थोड़े लोग आते थे तो ये पंजाब से यहां से वहां से, और क्या खेल रहे होंगे बताओ, क्या खेलते होंगे, बैडमिंटन, क्रिकेट, बाबा जैसे नहीं है वो आजकल बच्चे नहीं खेलते गली में, वो लगाते हैं छोटी बाल, वो हमारे दादा बेचरतन वो फेंकते थे, बाबा लगाते थे, बच्चे पकड़ लेते थे, हम बाबा के बच्चे। मैंने कहा ये तो देखो ये तो वही सीन है जो कि वो दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण वो गेंद खेलता था वो, तो हमने फोटो लेने की कोशिश की कि मैं एक तो बहुत बढ़िया बात है, कौन खेल रहा है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर और बच्चों से खेल रहा है, बच्चों को खिला रहा है। तो मैंने ली, बाबा ने खेल बंद किया कि बच्चे फोटो मत लो। मैं अच्छा, बाबा ने महावाक्य प्रारण क्या किए पता आपको, जबरदस्त महावाक्य थे, बच्चे मेरा तो फोटो आएगा नहीं, कौन बोल रहा है ये हैं? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों ही बोल रहे, न ब्रह्मा बाबा की आत्मा का आएगा न शिव बाबा का आएगा। और फिर क्या बोला, बच्चे ये शरीर तो छींची है बाबा, हमेशा शरीर से भिन्न न्यारा करते थे, शरीर को क्या देखना है, आत्मा का तो फोटो आएगी ना शिव बाबा का आएगा ना ब्रह्मा बाबा का आएगा, ये शरीर तो खींची है। मैंने कहा बात तो राइट है, तो हमने आप मानेंगे कभी फोटो नहीं खींचा, वो फोटो भी नहीं खींचा, फिर बाद में कहा बच्चे खींच लो, उसके बाद बाबा के साथ हमारा फोटो भी नहीं आया कोई। और तो मैंने कहा ठीक है बाबा नहीं खींचते, फिर कहा बच्चे खींच लो कोई बात नहीं है, लेकिन बाबा हमेशा हर बात में ये सिखाते थे कि शरीरों को भूलो, देही अभिमानी बनो और शिव बाबा को याद करो। कभी जाएंगे यहां से, जब क्लास के बाद क्या होता था, एक दिन के एक इवेंट बताता हूं आपको बाबा का, मैं पहले नहीं सुनाया, क्लास के बाद जाके बैठते थे वहां, जब बाबा कमरा है ना चारपाई, बाबा बैठते थे चारपाई पर, हम सब बच्चे थोड़े होते थे बैठ जाते थे, मैं बताऊं बाबा जब मुरली सुनाते थे ना, मुरली जब निकलती थी बड़ा रुहाब होता था, यानी फोर्स होता था बाबा में, यानी ऐसा लगता था जैसे वो जबरदस्त नहीं ताकत जैसे लगती थी, फिर वो धीरे 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 नीचे जैसे आते ऐसा लगता था। एक बार मैं क्या कहा, मैं कोई जब मैं जगदीश भाई के साथ और चित्र बनवाने थे हमने, थोड़ा मैंने बात की, बाबा बोला नहीं बिल्कुल, कुछ ही से बाबा बोलना नहीं चाहते थे उस मुरली के बाद। तो धीरे धीरे अपने कमरे में आएंगे बैठेंगे, उसे हम चैम्बर कहते थे, बहुत ऑफिशियल मुरली, ये अनऑफिशियल बातचीत होती थी। तो बाबा ने एक प्रश्न पूछा, आपसे पूछना हो, स्वयं डायरेक्ट बाबा ने पूछा कि बच्चे सबसे कि अंग अंग में सुगंध किसके होगी, आप विचार करो, कहते ना अंग अंग में सुगंध किसकी कहेंगे, मनोहर दादी बैठी थी और भी बैठे थे, किसी ने कहा मम्मा पवित्र है उनके अंग अंग में, किसी ने बाबा कहा, किसी ने कुछ कहा, मेरे से पूछा, मैंने कहा बाबा श्री कृष्ण की में होगी, बाबा ने कहा ठीक राइट बात, क्यों, क्योंकि श्री कृष्ण जो है उसका शरीर भी पावन है और आत्मा भी 16 कला संपूर्ण है। बाबा ने यही एक्सप्लेन किया, केवल देवताओं के या श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण के और किसी के लिए नहीं कह सकते, तो बाबा शिक्षा देते थे, तो इस ये भी शिक्षा दी। इस प्रकार से चलते चलते सारे हमें परिवार के भी ज्ञान में आ गए, सारे ज्ञान में आ गए, तो हमें फिर वो चित्रशाला हमने खोली, बाबा ने खुलवाई, चित्रों की इन्वेंशन हुई बॉम्बे में। तो एक चांस ले लिया हमने, कहा जल्दी से चांस ले लो तो काम पूरा वो उसमें अच्छा होता है, वी शुड टेक चांस। हमें चित्रशाला बनाई दिल्ली में, एक मकान मिल गया, आर्टिस्ट एम्प्लॉय किए, तो चित्र बनवाने शुरू कर दिए, आत्मा का परमात्मा का, नए नए प्रकार के चित्र, शिव शंकर में अंतर और शिव किरणों वाला भी इन्वेंट कैसे हुआ, पहले तो हम कहते ज्योतिर्लिंगम कहते थे, तो शिव किरणों वाला बना और चित्र बने, भिन्न भिन्न 20 चित्रों का सेट लेकर के हम बाबा के पास यहां आए। आवर फर्स्ट वर्क, पहला हमारा काम था जो कि इंडिपेंडेंट, हम लेकर के बाबा के पास आया। तब ये हाल बन चुका था, इसकी हाल वहां रख दिया। बाबा आए या दीदी आई या मम्मा आए भी याद नहीं है, सारा देखा, देख करके सब देख करके, सब अच्छी तरह से देख करके, मैं बता रहा था बाबा इसका तैयारी है, तो आकर के अपने कमरे में, बाबा अपने कमरे में आए, अब मुझे बुलाया, बच्चे आओ, और मैं गया, मैं नीचे बैठने लगा, गद्दी है ना, गद्दी के नीचे, और बच्चे जी ने गद्दी मेरे साथ बैठो यहां, बाबा अच्छे भाई पहली अटेम्प्ट है, और बाबा ने बच्चे ने पुरुषार्थ किया तो मेरे साथ अपने गद्दी के साथ बिठाया, और फिर माँ बाप के चौन के वरदान दिया। बाबा ने कहा बच्चे जो बाप की गद्दी सो किसकी, बोलो बच्चों की गद्दी, यहां भी और फिर वहां भी, वहां कहां, बोलो बोलो। अभी आप भी ऐसे हैं, क्या समझते हैं, ये बहुत बड़ा वरदान था कि हमें गद्दी मिलेगी, यहां भी मिली हुई है वहां भी मिलेगी। अब ज्ञान अमृत मोहन किसका है, मेरा थोड़ा है, बाबा का है, हम वो संभालते तो है ना, वो गद्दी हुई ना बाबा की, यहां है तो फिर वहां भी मिलेगी, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही बाबा का, बाबा को, बाबा का मैं विजय पाओ मेरे पर वहां भी गद्दी मिलेगी। तो आपका भी ऐसे है, क्या समझते हैं, आपका घर किसका है, बोलो। अब छोटी आप पुलिस वाली आने की, अच्छी तरह बताओ किसका घर है, वो आपका है बाबा का है, बाबा का है, बिल्कुल बाबा का, ये समझो बाबा का है, बस भला आप रहते हैं खाते हैं पीते हैं, दुकान है मकान है कुछ भी आपका वो होंगी प्रॉपर्टी, ये मत समझो मेरी है, किसकी है, उस बाबा की है। तो उसमें क्या होगा, उसकी समझेंगे आप, वो तो नहीं कर सकते जैसे बाबा ने किया, बाबा ने सब तन मन धन समर्पण कर दिया, उस वक्त दरकार थी, यज्ञ की स्थापना होनी थी, बताइए, मैंने बताया ना बाबा की पर्सनैलिटी कोई सिंपल नहीं थी, असाधारण थी, कितने धनवान थे आप पता है आपको, बहुत धनवान थे। देखिए मुझे वो नारायण दादा ने सुनाया कि जब वो दादी ब्रिज इंदिरा है ना, ब्रिज इंदिरा उनकी बहू, उनके एक लड़के की शादी हुई और वो अगले दिन जाते हैं अपने लौकिक पेके घर जाते हैं ना, वो ऐसा रिवाज है, कहते 2,90,000 के गहने पहन के वो गई थी उस वक्त 1934-5 जो भी होगा, इतना धन तो था। 14 वर्ष तक इतने भाई बहनों की पालना हुई, कितना धन चाहिए, और राय तरीके से पालना हुई, बोले औरों ने भी दिया, कितना धनवान थे, धन भी सुंदर धन भी बहुत, और मन से तो दिव्य उदार तो थे ही, आप जानते हो इसकी पढ़ी होगी आप। तो मैं कहता हूं ये साधारण ही असाधारण तंता जिसका बाबा ने प्रयोग किया, हां अंबानी वगैरह नहीं था या शंकराचार्य नहीं थे, लेकिन था तो असाधारण। इस प्रकार से हम वो जो वरदान मिला उससे बहुत सेवा, बहुत उमंग उत्साह आया, सैकड़ों प्रदर्शनियां बनी, म्यूजियम बने, मेले बने, एक छोटी सी चित्रशाला से कितना काम हुआ बात मत पूछ। कराने वाला वो है, वो उसने कराया, कैसे हुए, जगह जगह प्रदर्शनियां गई, म्यूजियम बने, ये बना, तो बाबा ने ये काम कराया, तो बड़े हमें भी खुशी हुई, बाबा ने एक एज ए टूल बना करके हमारे से सेवा ले ली, जीवन सफल कर दिया। ऐसे करते करते फिर जगदीश भाई वो फॉरन की सेवा इनकी बहुत चालू होगी, फिर कहा कि ज्ञान अमृत भी आप संभालो, लिटरेचर भी संभालो, फिर वो भी हमने कार्य शुरू किया। तो अपने आप को इस कार्य में बिजी कर दिया। हम तीन शब्द याद करते थे, बाबा भी कहते थे जो वर्क हो जल्दी से जल्दी हो, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, यानी अर्लीएस्ट और बेस्ट, और वो भी बच्चा से अच्छा, और फिर थर्ड क्या है, चीपेस्ट, सस्ते से सस्ते भी होना चाहिए, पहले फ्री होना चाहिए, उनकी सेवा करो, समझाओ, वो फ्री काम करके दे। बाबा कहते थे और हम करते भी थे, मुझे याद है कई काम फ्री कराते थे। हमारे जगदीश भाई जी बड़े जबरदस्त, जिसके पास जाएंगे ना उनको ऐसा ज्ञान सुनाएंगे वो एकदम मोहित हो जाएगा। वो कहते हैं भगवान को तो मैं बाद में देखूंगा, मैं तो आप में ही भगवान देख रहा हूं, ऐसे कैसे मैंने देखा, कहीं तो कहीं ने बोला। और वो आप बातें बहुत लंबी चोरी है, वो छोड़ो, मतलब कहने का बाबा हमेशा कहते हैं बढ़िया से बढ़िया काम हो, जल्दी से जल्दी काम हो, टाइम नहीं है, और अच्छा सस्ते से सस्ता होना चाहिए। तो ये बाबा सुनाते थे, वो भी हम करते थे, चित्र बनते गए, सेवा होती, प्रदर्शनी होती गई, बहुत सेवा हुई। उसके बाद तो अब 92 में हम यहां आ गए, शांति वन में बड़ी दादी से मिले, दीदियों से मिले, मैं कहता कितने सभी दीदी दादियां, बड़ी बड़ी दादियों से, बहनों के साथ हमने कार्य किया, सेवा की, बाबा ने कार्य कराया। दादी ब्रजिंद्रा हो, दादी ऑलराउंडर हो, जितनी भी दादियां हैं वो सबने म्यूजियम बनाया था, हम वहां गए। वो निर्मल शांता दादी कलकत्ता में थी, जहां जहां हमारे चित्रों की सेवा आई, हम पूना में भी गए, सब जगह जाते थे। अव्यक्त बाबा के अव्यक्त होने के बाद ये सेवा होती थी, बड़ी खुशी है कि बाबा ने ऐसे में पार दिया। फिर यहां आगे, यहां बड़ी दादी थी हमारी, कितनी वंडरफुल दादी थी, दादी हमारी कुमार का दादी, दादी प्रकाश बनी जबरदस्त। उनके एक वाक्य मैं सुनाता हूं आपको कि उनके मुख से निकलता था, कोई कहता ना आप बाली बहुत बड़े हैं, आपका तो ये है ये है ये, कहते नहीं दादी की न मान चाहिए, न मर्तबा चाहिए, न मनी चाहिए, न महिमा चाहिए, क्या चाहिए हमको बोलो, क्या चाहिए बोलो, हमें बाबा चाहिए। ये उनके मुख से निकलता था, उनके साथ भी रहने का हुआ। तो कहने का मतलब ये, आप तो समय बहुत समय बीत गया, अब तो समय नजदीक है, कभी भी कुछ हो सकता है, तब हमको क्या करना है, फिर बाप समान बनना है ना, हाँ या ना, क्या बनना है? तो भाई हल्की हाँ करते हैं, ठीक है चलो, बाप समान बनना है, पक्का बनना है बाप समान। कुछ तो बने हैं, कुछ आगे बने, कितना फासला है बताओ, कितने नजदीक आगे बाप समान के, कितने किलोमीटर बाकी रह गया है, कितना नजदीक है, कितना दूर है, अभी बोलो नजदीक पहुंच गए? हाँ जी, कोई तो वहां बोल रहा है नजदीक, तो कितना पुरुषार्थ किया, तन मन धन लगाया, योग किया, कुछ तो नजदीक पहुंचे है ना, परंतु बाप समान बनने का क्या हमारा वो है, परक क्या है? देखो पहली परक तो ये है, फर्स्ट स्टेज क्या है, मैं तो सब जगह सुनाता हूं, पहली स्टेज यह है कि हम क्या बनना, कर्मातीत फरिश्ता बनना है, ठीक है ना, क्या बनना है, कर्मातीत फरिश्ता। उसकी पहली स्टेज यह है, बाबा ने भी अभी कुछ दिन पहले मुरली में सुनाया था कि आप विकर्माजीत बनो, नो विकर्म है ना, अब विकर्म तो नहीं होता ना, किससे होता है, नहीं नहीं होगा। बाबा को भी ये सेटिस्फेक्शन है कि आप मेरे ब्राह्मणों से कोई विकर्म नहीं होता होगा, ठीक है, नहीं ना, ये इस स्टेज को तो पार कर लिया कि नहीं, जिन्होंने कर लिया आप गला करें, अभी थोड़े बचे हैं, कर लिया होगा लेकिन आप लज्जा कर रहे हैं जी, विकर्मा जीत होना चाहिए, नो विकर्म, पाप कर्म नहीं, डरना चाहिए, पाप किया तो मेरा नाम बाबा का, बदनाम किया तो क्या होगा, आज रोज मुरली में आ रहा है, तो बदनाम किया तो बहुत सजा खानी पड़ेगी, देखो तो नो विकर्म पहला स्टेज, विकर्मा जीत। दूसरी स्टेज क्या है, सेकंड क्या है, सेकंड है विकल्पा जीत, ना कोई विकल्प नहीं आना चाहिए अब, ठीक है, वो भी नहीं आता होगा। क्या आता है? लोभ का विकल्प मीन बुरा संकल्प, घटिया संकल्प, अच्छा संकल्प नहीं है, दृष्टि इम्प्योर हो जाए, नो। तो विकल्पाजीत, विकल्प नहीं आना चाहिए, वो भी नहीं आता होगा, ठीक है, नहीं आता ना, हाँ नहीं आता होगा, नो विकल्प, विकल्पाजीत। थर्ड क्या है फिर बताओ, थर्ड स्टेज क्या है? व्यर्थ अतीत, तीसरी है कि व्यर्थ से भी किनारा, काम से काम। दादी गुलजार जी कहती है, एकदम मैंने पूछा ये क्यों, क्या, कब, कैसे, ये तो बड़े मोटे मोटे है ना, ये क्यों है, क्या है, कब है, कैसे है, कौन है, इन बातों से परे जाना, मैंने व्यर्थ अतीत हुए, व्यर्थ नहीं है। दादी जी एक दफा कहा कि नहीं, ये इससे भी और आगे जाओ। अभी आप यहां बैठे हैं, आपको सिकंदराबाद का ख्याल आ गया, भाई भी फायदा उसका, तो वो भी नहीं है। जिसमें जो संकल्प चाहिए वो आना चाहिए, यह कमाल, बड़ा पुरुषार्थ है महीन। तो व्यर्थ से भी परे। चौथी स्टेज क्या है बताओ फिर, फोर्थ क्या है? बाबा भी कहते मेरे बच्चों में व्यर्थ अभी थोड़ा है, मुरली में कहा था एक दफा, विकल्प तो नहीं होगा, व्यर्थ थोड़ा थोड़ा है। बाबा यहां तक बच्चों में फेत रखते हैं, आप सोचो कहां तक है। बाबा कहता इसके भी आगे और चलो, साधारण अतीत, यानी हमारे संकल्प साधारण ना हो, विशेष हो। मैं बताऊं, बाबा का हर कदम, हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प सदा विशेष था, बता दें आप, ऑलवेज समथिंग स्पेशल, विशेष। किसी को देखेंगे ना ऐसे, वो ध्यान में चला जाएगा, इतनी ताकत। किसी पे ऐसे हाथ भी रख देंगे ना, उछल जाएगा, खुशी से फूला नहीं समाएगा। यानी बाबा का हर चीज विशेष थी, जो नो साधारण था। तो ये हम बाप समान बनना चाहते हैं, बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मा बाबा जैसा, एडम आदम, वी वॉन्ट टू बिकम लाइक दैट, कम बात हो रही है कोई, तो ऐसा होना चाहिए। फिर एक एक सेकंड, जब अभी ना एक दो दिन संडे की अवैध मुरली में था, पुरुषार्थ करो, हर सेकंड पुरुषार्थ करो, यानी वो सफल करो समय को। आप चल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, पूछो, मैं चलते चलते क्या सोच रहा था, आपसे पूछे कोई, ऊपर से नीचे है, क्या सोच रहे थे, मैं पूछूं तो कहेंगे नथिंग, कुछ भी नहीं। अच्छा, आप खाना खा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अपने आप खाना मुंह में जा रहा है, कभी ऊपर आंख में तो नहीं जाता, कभी अपने आप जाता है, जाता ना, कभी सोचना पड़ता है कि यहां करेंगे, यहां करें, अपने आप जाता है। यानी हमारे बहुत सारे कार्य विदाउट एनी बुद्धि काम नहीं, उसमें नहीं, बुद्धि का काम नहीं होता। तो बाबा कहता है जिस कार्य में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, क्या करो, स्वयं को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, यानी ये कन्वर्ट करो। यानी जो हम नथिंग, अब हमारे ब्राह्मणों का टाइम नथिंग में बहुत जाता है, भले विकल्प भी नहीं होंगे, व्यर्थ भी चलो थोड़ा हो, लेकिन नथिंग में जाता है, थिंकिंग नथिंग, क्या सोच रहे पता नहीं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ सोच नहीं रहे। बार बार कहता है कि वो जो नथिंग को समथिंग में कन्वर्ट करो, यानी प्लस में करो, नथिंग इज जीरो। जैसे ना स्कूटर चलाते हैं ना, और गियर को लगा दो जीरो पर, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, किक आपने लगा दी और पेट्रोल जाया जा रहा है। तो अभी ये ब्राह्मणों का बहस में, तो आपका तो नहीं, मैं कहता आप तो बड़े बहुत प्रसाद करते हो, महारत ही है, और इतने बाबा घर में भट्टी करने आए, कम बात नहीं है, ये बड़ी विशेष आत्मा है। लेकिन ब्राह्मणों का ये देखा है कि हम ब्राह्मणों का समय जीरो, वो नथिंग में जा रहा है, उस नथिंग की बजाय आप पॉजिटिव में लगाओ, गियर बदलो, उसको पॉजिटिव सोचो। क्या पॉजिटिव है? बड़ी सिंपल बात है, कुछ ज्यादा सोचने, माथा मारने की दरकार नहीं। दादी जान के मैं कौन, और मेरा कौन, और मैं कहां। बस मैं तो भाई याद करता हूं, जो कोशिश करता हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, शांत आत्मा हूं, शीतल आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, लाइट और माइट हूं। पहले तो आत्मा के संकल्प धीरे 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 डिवाइज करते हैं। देखो इंसान के मनुष्य के मन में एक समय पर एक ही संकल्प आएगा, दो संकल्प इकट्ठे कभी नहीं हो सकते। व्हाट इज योगा? टू इरेडिकेट ऑल अदर संकल्प एंड टू कल्टीवेट, टू ब्रिंग इन दीज प्योर संकल्प। ये भी एक मेडिटेशन का तरीका है। बाकी तो बिंदु वन बिंदु को याद करना तो ठीक है, लेकिन मेडिटेशन मीन्स और सब संकल्पों को हटाओ, मत आने दो, आए तो निकालो, आत्मा पर विचार करो, आत्मा हूं, उसके गुणों को याद करो, फिर अपने घर को याद, घर पहुंचो, शिव बाबा को देखो, उसको याद करो, उसके गुणों को याद करो, इन चीजों को बुद्धि से भरो, भरपूर करो, और कोई संकल्प ना आने पाए। क्योंकि बाबा ने कहा है जो प्योर संकल्प है, पॉजिटिव संकल्प है, उसे दो चीजें मिलती है, बताओ कौन सी? एक प्योरिटी और एक पावर। ये बाबा भगवान ने कहा है, प्योरिटी भी उससे आएगी और पावर भी उससे आएगी। और सत्युग में क्या चाहिए? क्राउन ऑफ प्योरिटी एंड क्राउन ऑफ पावर। बताइए कितना सहज है, यानी देवता बनने के लिए दो क्राउन चाहिए, वो आता है पॉजिटिव थॉट्स से, यही सिंपल थॉट्स, मैं कौन, मेरा कौन, मैं कहां का, इसको और डीप ले जाओ, बहुत काफी दूर तक उसको कर सकते हैं। बाबा को संबंधों से याद करो, हम तो करते हैं, बोले हम कहते बिंदु बन बिंदु को भी करते हैं। एक दफा दादी गुलजार से मिलते चिट चैट हुई, मैं दादी जी आपने जो बाबा ने जो बताया ना ये पांच स्वरूप, ये तो बड़ा सहज है, इसको करते रहो करते रहो, घुमाते रहो। मैं निराकार आत्मा हूं, निराकार धाम का हूं, निराकार बाबा का बच्चा हूं, निराकार ये अवस्था, फरिश्ता अवस्था, और उसके बाद वो क्या नाम, निर्विकार ये अवस्था, यानी वो गोल्डन एज वाली देवता, फिर अलंकारी यानी वो पूज्य स्टेज, निरंकारी ब्राह्मण, निराकार आत्मा, अकारी फरिश्ता और निर्विकारी देवता, अलंकारी पूज्य द्वापर योगी जब पूज्य होते हैं, और निरंकारी ब्राह्मण। ये पांच शब्द याद करो और पांच अवस्थाओं में घूमते रहो, और इसको और ज्यादा दूर करो, लंबा करो, तो और कितना हम चलते हैं ना, जब ये वो नीचे डायमंड हल्का करते हैं, शुरू करते हैं, तो एक चक्कर में एक ही एक बार मुश्किल से होता है, बहुत डिटेल है इसकी बहुत। तो अपने मन में बुद्धि में सारे शुभ संकल्प भरपूर हो, कोई भी भरपूर होगा तो ना व्यर्थ आएगा ना विकल्प आएगा, देखिए ना साधारण होगा, ये तो विशेष संकल्प है ना, समर्थ संकल्प है। तो मुश्किल है आसान है ना, तो क्या समझते हैं ये आसान है या मुश्किल है? बोलो आसान है, लेकिन थोड़ी सी बात अटेंशन देने की बात है बड़ा इजी, अटेंशन देने की बात है। कभी ये करो, कभी चलो अपने को आत्मा करते, सोचते सोचते होते परम धाम पहुंच जाओ, शिव बाबा को देखो, ज्योति बिंदु स्टार, उसको बुद्धि रूपी आंख से देखते रहो, कोई बीच में छोटा छोटा संकल्प है तो कोई हर्जा नहीं, कोई गुण आ जाए, कोई शक्ति आ जाए, लेकिन गो ऑन सीइंग एंड सीइंग एंड सीइंग, वो सत्यम है, शिवम है और सदा सुंदर है, सदा सुंदर वही शिव बाबा है, देखते रहिए आप उसे लाइट माइट लेते रहिए, अतीन्द्र सुख की प्राप्ति होगी। बहुत मैंने ट्राई करके देखा कि अगर हम ऐसी इसी प्रकार से शिव बाबा को देख रहे हैं उसे लाइट माइट ले रहे हैं, यू विल बी इलेटेड, खुशी का पारा चल जाएगा। और शिव बाबा को रमणीकता से नौ, हम तो नौ संबंधों से याद करते हैं उसको, इतने सारे संबंध तो है ही हैं, लेकिन नौ संबंधों से, बताऊं टाइम तो हो गया आपका, थोड़ा बता देते हैं, नौ संबंध कौन से हैं। पहला संबंध कौन सा है बाबा से बताओ? हाँ जी, बाप। नो, पहला बाप थोड़ा होता है, माता, माँ के बगैर तो बच्चा पैदा कैसे होगा। फर्स्ट ही इज अवर डियरेस्ट मदर, डियरेस्ट है, बहुत प्यारी माँ है, उसको बहुत वो करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। तो क्या ब्रह्मा बाबा को कितना फेस करना पड़ा, बात मत पूछिए। एक आया था ये यहां से सौराष्ट्र के बाद क्या है वो जगह, एक आया था भाई, मुझे कहता है मेरे हाथ काट दो। मैंने क्यों काटे भाई तुम्हारे हाथ, क्या बात है? मैगजीन में आर्टिकल आया, कहता मैंने इन हाथों से बाबा के मकान पर पत्थर फेंके हैं। देखो मैंने बहुत गलती की, मैं यहां जब ज्ञान मिला मुझे, मुझे तो सब मेरी आंख खोली, तो मैंने ये बहुत बाबा के मकान पत्थर पे, इतना बाबा को फेस करना पड़ा, कम बात नहीं थी। तो ही इज ओवर मदर, मां को तो बहुत तकलीफ होती है ना, वो तो करना पड़ता है। डियरेस्ट मदर है, सबसे प्यारी मां है। और दूसरा संबंध है फिर तो स्वीटेस्ट फादर है, ठीक है, वो भी स्वीटेस्ट है। क्या देता है? स्वीट होम और स्वीट राजधानी का वर्षा दे दिया हम बच्चों को, ठीक है। थर्ड क्या है फिर बोलो? हाईएस्ट टीचर है, हाईएस्ट, ऊंचे उससे और टीचर हाई, और पढ़ाई भी हाईएस्ट है और इजीएस्ट पढ़ाई है। 21 जन्मों के लिए राजभाग्य देता है, वो माता है, वो दाता है, और ये भाग्य भी दाता है। टीचर, माता, दाता और भाग्य भी दाता। आगे क्या है? होलियस्ट सतगुरु, मतलब बिल्कुल होलियस्ट, यानी वरदाता, वरदान देता है। फिर अनफेलिंग फ्रेंड, साथ निभाता है हमारा, आपका दोस्त है, उसके हाथ में हाथ दे देंगे आपको लेके जाएगा, वो कभी छोड़ेगा नहीं। कितनी मुसीबत हो अगर बाबा याद आया, बाबा के हाथ में हाथ है, मुसीबत टल जाएगी। हमारे पास बहुत अनुभव आते हैं, बहुत ज्ञान अमृत में, तो वो साथ निभाता है। आगे क्या है फिर वो? सुनोना साधन है, समझे, हमको सजाता है, किससे? ज्ञान गुण शक्तियों से हमें श्रृंगार करता है, वह हमारा सुलोना साजन। और कहां ले जाता है? पियर घर। और कहां भेजता है? ससुर घर में भेज देता है, ये रमणीक याद है। फिर चलिए, अब वो है सर्जन, है सुप्रीम सर्जन, हमको बचाता है, किससे? वायरल से, समझे, इंजेक्शन लगाते हैं ना भाई, कोई वायरल बुखार ना हो जाए, ये पहले इंजेक्शन लगा देता है। फिर हमारा फेथफुल चाइल्ड है, समझे, उंगली पकड़ के हमको पार लगाता है, भाव सागर से पार ले जाता है। और नवा संबंध है मोस्ट बिलवेड माशूक, गले लगाता है, समझे, माशूक भी है, सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है, सदा सुंदर है। ऐसे बाबा को याद करना चाहिए, शुद्ध संकल्पों में रमन करते 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 बिंदु रूप में टिक जाओ, टिकना चाहिए, क्योंकि शुद्ध संकल्प एक मेडिटेशन है, उसको मैक्सिमम इसमें रमन करे तो क्या है, प्योरिटी भी आएगी और पावर भी आएगी, और कोई नहीं रोक सकता आपको जस्ट लाइक लक्ष्मी नारायण बनने से। तो क्या पुरुषार्थ करना है? इन संकल्पों, शुद्ध संकल्पों को रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, जब तक रिवाइज नहीं करेंगे रियलाइज नहीं होगा। भगवानो वाच, रिवाइज करो तो रियलाइज होगा। ये भी करो और बाबा को बिंदु बन बिंदु से याद भी करो, भिन्न भिन्न प्रकार से याद करेंगे तो खुशी रहेगी, आनंद आएगा, मजा आएगा। और बाबा जो कहते मेरे बाप समान बन जाओ तो वो होगा। देखो सबसे पहले ये संकल्प, कहते अपने चेहरे और चलन से सेवा करो, कैसे होगा? चेहरा कैसे बनता है? दिव्य, जब अंदर उसमें शुद्ध संकल्प चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, तो चेहरा दिव्य बन जाता, खिला हुआ चेहरा, तब तो सेवा होगी। चलन चलन ठीक कैसे होगी जब पहले संकल्प ठीक होगा? संकल्प बिगड़ा हुआ होगा तो चलन ठीक कैसे होगी? तो मेन है ये शुद्ध संकल्प। शुद्ध संकल्पों में सदा रमन करते रहो, करते रहो, करते रहो, तो सब कार्य सिद्ध होंगे। हम तो कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करते हैं, इस कोशिश को और बढ़ाओ। बाबा कहते हैं एक एक बूंद था ना, मुरली में था वो, क्या कहते हैं, बूंद बूंद से तालाब बनता है ना, ऐसा था कुछ। तो ये आप बार बार बीच बीच में याद करते जाए, करते जाए, करते जाएंगे तो तालाब बन जाएगा। इतनी कई बहुत में याद में हो जाएगा। ये बैठ के भी याद करो, चलते फिरते। अब यहां तो आप आए फ्री हैं, आज तो सेकंड डे है ना आपका, अभी दो दिन और है, तो एक सेकंड भी वेस्ट ना जाए, कोशिश करो, नो वेस्ट। इसी बात में लगे रहो, खाना खाते समय कुछ भी करना है, गो ऑन रिवाइजिंग एंड रिवाइजिंग, और बिंदु बन बिंदु को भी याद करो, ये भी याद करो। हम भी कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश कीजिए। सबके समूह से जो गोवर्धन पहाड़ उठेगा और नया युग आएगा, आया गया, बहुत दिन नहीं है, बहुत बहुत गलत खराब टाइम आता जा रहा है। बाबा ने कहा ना, प्रकृति भी खिलाफ हो रही है, दुनिया भी खिलाफ हो रही है, दुनिया भी खराब होती जाती है, कब तक चलेगी ये दुनिया? बहुत दिन चलने वाले नहीं है। तो उससे पहले अपनी तैयारी कर ले हम, क्या केवल और कुछ नहीं करना। बाबा कहता है सर्वधर्मानि पत्यज्य माम एकम शरणम्, मेरी शरण में आओ, मुझे याद करो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, गारंटी करता है, और क्या चाहिए। अच्छा बहनों भाइयों, ओम शांति, ओम शांति।
भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी जब बाबा की बातें सुनते हैं तो ऐसे लगता है जैसे सच्ची भागवत की कथा सुन रहे हों। सुनते सुनते सब मगन हो जाते हैं। मैं देख रही थी बाबा हमें कहते हैं फॉलो फादर करो, तो कैसे फॉलो फादर करें, क्या बाबा ने किया वो भी हमें समझ में आता है, तो फिर बाप समान बनना, फॉलो फादर करना हमारे लिए आसान हो जाता है। बहुत बहुत थैंक्स। अभी हम दो मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति।
अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला।